ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी की सीवर और जल निकासी व्यवस्था खराब हो गई है और हल्की बारिश आने पर भी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन के तहत विकसित दो स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा तकनीकों को हस्तांतरित किया। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने सरिता विहार अंडरपास से गुरु रविदास मार्ग टी प्वाइंट के बीच ओखला स्टेट मार्ग के सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर पैरा ग्लाइडर, पैरा मोटर्स, हैंग ग्लाइडर, क्वाड कॉप्टर और माइक्रोलाइट विमान की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि राजधानी की सीवर और जल निकासी व्यवस्था खराब हो गई है और हल्की बारिश आने पर भी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। श्री सचदेवा ने नालों की सफाई में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार के कारण ही राजेंद्र नगर में एक बड़ा हादसा कुछ दिन पहले ही हुआ।
जल बोर्ड, फायर सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, तीनों विभाग आतिशी के हैं। अच्छा होता इस रेगुलेशन एक्ट की घोषणा जिसे हम सलाना कह रहे हैं इसको करने की बजाय वो जिम्मेदारी लेते कि हाँ हमारे विधायक की गलती है जिसको ये भरा हुआ पानी का सीन दिखाया गया उसके बावजूद भी हंसता रहा, उसने काम नहीं कराया। हमारे पार्षद की गलती है जिसने अतिक्रमण होने दिया। हमारे फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की गलती है जिसने बिना जांच के एनओसी दिया। ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, इस्तीफा देती हूँ।
उधर दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबरॉय ने कहा कि दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था बहुत पुरानी है जिसकी वजह से राजधानी में जगह जगह जलभराव हो जाता है। उन्होंने कहा कि 25 से 30 वर्षों से जल निकासी व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ है और नगर निगम इसे बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, जितने भी बिल्डिंग बायलॉज हैं उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उन सभी कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन देने का निर्देश अगले दिन से ही दे दिया गया और उस दिन से लेकर आज तक उन बेसमेंट पर एक्शन लिया जा रहा है और साथ ही उनको सील किया जा रहा है। राजिंदर नगर के केस में कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट थी, जहाँ जहाँ फुटपाथ और ड्रेन्स पर पूरी दिल्ली में एनक्रोचमेंट है वहाँ पर एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाए और उन ड्रेन्स को खोला जाए, एनक्रोचमेंट की वजह से ब्लॉक हो चुके हैं और जहाँ पानी की निकासी होने में दिक्कत करते हैं।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन के तहत विकसित दो स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा तकनीकों को हस्तांतरित किया है। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर उपस्थित मंत्रालय में सचिव एस कृष्णन ने इन तकनीकों के सफल हस्तांतरण के लिए टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसे भविष्य की कल्पना है जहां प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नवाचार, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देते रहें। श्री कृष्णन ने कहा कि वहीं प्रौद्योगिकी के सफल स्वीकरण, कार्यान्वयन और व्यवसायीकरण को सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है। मंत्रालय के अनुसार प्रोस्टेट कैंसर का पता लगाने के लिए DNA एप्टामर तकनीक को कोलकाता के HUMMSA बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्टर स्वप्निल सिन्हा को हस्तांतरित किया गया है। एप्टामर को IIT दिल्ली के प्रोफेसर प्रशांत मिश्रा और उनकी टीम ने विकसित किया है। वहीं रोगजनक का पता लगाने के लिए फोटोनिक चिप आधारित स्पेक्ट्रोमीटर बायोसेंसर तकनीक को मुंबई के UNINO हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड के नितिन जवेरी को सौंपा गया है। इस तकनीक को प्रोफेसर जॉबी जोसेफ और संस्थान की टीम ने विकसित किया है। इससे रोगजनकों का त्वरित और सटीक पता लगाने में मदद मिलेगी जिससे संक्रामक रोगों की रोकथाम हो सकेगी। अभिषेक की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
दिल्ली सरकार की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली में सरिता विहार अंडरपास से गुरु रविदास मार्ग टी प्वाइंट के बीच ओखला स्ट्रीट मार्ग की सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। आतिशी ने बताया कि ये सड़क तुगलकाबाद, ओखला और कालकाजी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। और रोजाना हजारों लोग इस पर से गुजरते हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि शहर में सुरक्षित परिवहन नेटवर्क बनाने की दिशा में सरकार ओखला स्ट्रीट रोड का नवीनीकरण कर रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों का विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है और अधिकारियों को जल्द से जल्द सुदृढ़ीकरण और कार्य शुरू करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, क्वाडकॉप्टर और माइक्रोलाइट विमान की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने 15 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है जो इस महीने की 2 तारीख से 16 तारीख तक लागू रहेगा। पुलिस के अनुसार आदेश का पालन न करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। भारतीय जनता पार्टी की नेता और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद कमलजीत शेरावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हीं की आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालेवाल पर हमला हो सकता है तो दिल्ली की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। भाजपा नेता ने केजरीवाल के व्यक्तिगत सहायक विभव कुमार पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद आज एक प्रेस वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर इस तरह की घटना का होना निंदनीय है और इससे पूरी दिल्ली शर्मसार हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार दिल्ली पर अपना हक जमाना चाहती है तो उसके हक का पैसा भी दिल्ली को देना चाहिए। शैली ओबेरॉय ने कहा कि 23 जुलाई को केंद्र सरकार ने संसद में बजट पेश किया और इससे ठीक पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को चिट्ठी लिखकर उन्होंने दिल्ली नगर निगम MCD के लिए बजट मांगा था। केंद्र सरकार राज्यों समेत स्थानीय निकायों को भी बजट आवंटित करती है लेकिन MCD को केंद्र सरकार ने बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने मांग करते हुए कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा MCD को 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया जाना चाहिए लेकिन भाजपा सरकार ने MCD को बिल्कुल भी धन नहीं दिया। दिल्ली की जनता पूरी ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार को कर देती है लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार दिल्ली के लोगों का पैसा दिल्ली को नहीं दे रही है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की केवल शहरी आबादी के हिसाब से केंद्र सरकार को हर वर्ष MCD को 5,243 करोड़ रुपए देना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने कहा है कि देश 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। डॉ मुर्गन ने समाज सुधारकों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोक शाहीर अन्ना भाऊ साठे की याद में आज नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। डॉ मुर्गन ने देश की आजादी में समाज सुधारकों के योगदान को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अन्ना भाऊ साठे के रास्ते पर चल रहे हैं। वे सामाजिक न्याय हासिल करने के श्री साठे के प्रयासों को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉ मुर्गन ने यह भी कहा कि देश 2047 तक प्रगतिशील होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसके मद्देनजर काम कर रही है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि NDA सरकार ने पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे के निर्माण और सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए कई पहल की है। राज्यसभा में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज मास्टर प्लान पर काम किया होता तो शहर को हाल की बारिश के दौरान इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार और एजेंसियों को इन समस्याओं का समाधान खोजने की दिशा में काम करना चाहिए। इससे पहले बहस में भाग लेते हुए राकांपा की फौजिया खान ने कहा कि शहरी क्षेत्र और विशेष रूप से द्वितीय श्रेणी के शहर आवास की कमी, बढ़ते अतिक्रमण, मलिन बस्तियों का विस्तार और पर्यावरण के क्षरण जैसे मुद्दों से जूझ रहे हैं। IUML के हारिश बीरन ने कहा कि शहरी बाढ़ एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लोकसभा सचिवालय ने दिल्ली में भारी बारिश के कारण नए संसद भवन के भीतर पानी के रिसाव का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टों पर आज स्पष्टीकरण जारी किया। सचिवालय ने एक बयान में कहा कि लॉबी के ऊपर कांच के गुंबदों को लगाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री के उखड़ने से पानी का मामूली रिसाव हुआ। समस्या का पता चलने पर तत्काल इसे ठीक कर लिया गया। सचिवालय ने कहा है कि किसी अन्य स्थान पर पानी का कोई और रिसाव नहीं हुआ है। मकर द्वार के सामने जमा पानी भी तेजी से निकल गया। सचिवालय ने कहा कि संसद के दैनिक कार्यों में प्रचुर प्राकृतिक प्रकाश का उपयोग करने के लिए हरित संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामले सुनवाई योग्य हैं और इन पर सुनवाई जारी रह सकती है। न्यायालय ने हिंदू पक्ष के मामले के आधार को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसी वर्ष 31 मई को उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कृष्ण मंदिर के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग को लेकर कई मामले दायर किए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि औरंगजेब युग की मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, लेकिन मस्जिद प्रबंधन समिति और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने तर्क दिया है कि मुकदमों को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत वर्जित किया गया है। बीजू जनता दल की पूर्व नेता ममता मोहंता आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। वे पार्टी महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा के पार्टी प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई। ममता मोहंता ने कल बीजद और राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने आज राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के ईवी चिन्नैया के फैसले को 6 के मुकाबले एक फैसले से खारिज कर दिया। ईवाई चिन्नैया ने अपने फैसले में कहा था कि अनुसूचित जाति के आरक्षण का उपवर्गीकरण भर्तियों और सरकारी नौकरियों में स्वीकार्य नहीं है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत एनबीटी इंडिया के 68वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज दिल्ली में पुस्तकें और पठन अवधारणा एक ऐतिहासिक महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता पद्मश्री से पुरस्कृत इतिहासकार डॉ मीनाक्षी जैन ने राष्ट्र निर्माण के हर विषय पर पुस्तकें समाज के हर वर्ग के लिए उपलब्ध हो इसके लिए एनबीटी से सराहनीय कार्य किया है। डॉ जैन ने देश की शिक्षा परंपरा गुरु शिष्य परंपरा और लिपि विकास पर कहा कि देश भारत में पढ़ने लिखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और विश्व ने भारत की सभ्यता संस्कृति और विचारों को अपने यहां की शिक्षा पद्धति में शामिल करने का हमेशा से प्रयास किया है। राजधानी दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजधानी की सीवर और जल निकासी व्यवस्था खराब हो गई है और हल्की बारिश आने पर भी सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड एप्लीकेशन के तहत विकसित 2 स्वदेशी स्वास्थ्य सेवा तकनीकों को हस्तांतरित किया। दिल्ली सरकार की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने सरिता विहार अंडरपास से गुरु रविदास मार्ग टी प्वाइंट के बीच ओखला स्टेट मार्ग की सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दी। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर पैराग्लाइडर पैरामोटर्स पर उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया।